देवियों सज्जनों, गीता की 16 चैप्टर 16वें चैप्टर की श्रृंखला में हम हैं। उससे पहले एक दो बातें। हमारे ह्यूस्टन में फ्रॉड में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। जैसे जैसे समय बीतता है पता लगता है कितने लोग का घर टूटा है, डिस्प्लेस्ड हुए हैं। इवन हमारे अपने आर्य समाज परिवार के भी बहुत सारे लोगों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सब जो लोग पीड़ित हैं जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से उतरें। अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आर्य समाज करने के लिए इच्छुक है, तो आप चाहें तो किसी भी तरह की आपके घर की सफाई से लेकर किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, आप किसी भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देव जी लेकर संजय सूद जी, शेखर जी, संजय आहूजा जी, हमारे AKM के कोऑर्डिनेटर, अगर आप किसी को नहीं जानते मुझे बता सकते हैं तो हमें खुशी होगी हम अगर किसी भी तरह के आपकी इस आपदा में काम आ सकें। इसी साथ बात के साथ आगे बढ़ते हैं। तो गीता के 16वें चैप्टर में जो कि इंसान के अंदर जो अलग अलग टाइप के नेचर्स होते हैं उसको दो तरह से क्लासिफाई किया, एक डिमोनिक है, डेविल है, और दूसरा डिवाइन है, दैव है। शुरू में हमने जो मनुष्य के अंदर दैव गुण है, जो डिवाइन नेचर है, जो डिवाइन क्वालिटीज है, उनके बारे में कुछ दिनों तक हमने चर्चाएं सुनी। अब हमें ये चर्चा करनी है कि हमारे अंदर या हमारे आसपास लोगों के अंदर कौन से ऐसे खराब गुण हैं जो व्यक्ति को असुर बनाता है, राक्षस बनाता है। छोटा हो कम हो तो छोटा राक्षस होते हैं, कम बुरे होते हैं, ज्यादा होता है तो ज्यादा बुरे होते हैं। राक्षस का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दो चार सिंह वाले, 10 सर वाले, या देवता का अर्थ ये नहीं कोई टीवी सीरियल में देखने वाले कोई सोने का मुकुट पहन करके स्वर्ग के किसी सिंहासन पर बैठा हो। हमारे और आपके व्यवहार और हमारे आप में से कोई देवता होता है, कोई राक्षस होता है। और सबसे मजेदार बात है, हम और आप सबके अंदर वो देवत्व और असुरत्व है। कभी कभी बहुत अच्छे हम हो जाते हैं, कभी कभी बहुत बुरे हो जाते हैं, कभी कभी एवरेज रहते हैं। अगर हमें पता हो हमारी असुरी प्रवृत्ति और हमारी दैव प्रवृत्ति क्या है तो उसके साथ डील करना आसान होता है। तो मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, द्वौ भूत सर्गौ लोके, भूत सर्गौ लोके, स्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त, आसुरं पार्थ मे शृणु। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, पार्थ मतलब पृथा का बेटा, पृथा अर्जुन कुंती का नाम है, हे कुंती का पुत्र। ध्यान रखिएगा, ये साइड बाय साइड एक दो चीजें आपको बताना जरूरी है। अगर आप प्राचीन भारतीय शास्त्र देखेंगे आपको एक मजेदार चीजें मिलेगा। जैसे कि आजकल हम जो अपना रेफरेंस देते हैं या फॉर्म वगैरह में भरते हैं, किसी को बताते हैं मैं अमुक का बेटा हूं, जनरली पिता का नाम लेते हैं। वो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में काफी जेंडर इक्वलिटी की सेंस आने लगा है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में मां बाप दोनों के नाम आते हैं, ऑफिशियली आते हैं, पर बोलने में आज भी हम पापा का नाम ज्यादा लेते हैं, मां का कम लेते हैं, अगर सिंगल मदर ना हो तो। पर अगर आप अपने लिटरेचर को, अपने धर्मशास्त्रों को देखेंगे आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। मान लीजिए आप गीता पढ़ते हैं, कृष्ण और अर्जुन के संवाद में जितने एड्रेस होते हैं, कृष्ण अर्जुन को एड्रेस करते हैं, उसमें 70% एड्रेस वो उसके मां के नाम से करते हैं, है ना, कौंतेय, पार्थ। तो आप कोई भी लिटरेचर, हिंदू शास्त्र उठाकर देखिए, मां और पिता में कोई कोई फर्क नहीं होता था। और खास करके हमारे शास्त्र रचना करने वाले ऋषि मुनि तो माओं को इतना प्राधान्य देते थे कि बच्चों की जो आइडेंटिटी है वो पापा से पिता से ज्यादा मां से होती थी। इसलिए आप जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि या उनके बड़े महापुरुषों के इतिहास आप पढ़ेंगे व हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पीछे उनका जो एडजेक्टिव है वो ज्यादा मैटरनल है इंस्टेड ऑफ पिटर पैटर्नल है। तो इसी तरह अब गीता भी पढ़ते हैं, रामायण पढ़िए, आप देखिए आपको कितने कितने बार आपको मां से रिलेटेड करके बच्चों को देखा जाता है। तो इसी तरह कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं पार्थ, पृथा का बेटा, पृथा कुंती का दूसरा नाम है, कि इस संसार में दो तरह के सृष्टि है, दो तरह के लोक रहते हैं, एक दैव एक असुर, एक डिवाइन नेचर वाले एक डेविल नेचर वाले। डिवाइन नेचर वालों का डिस्कशन हमने किया, बहुत किया, अब हम आसुरी प्रवृत्ति वालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सुनो, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, बोलिए, जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शुरू शुरू के जो सबसे बेसिक उनमें जो आइडेंटिफाई करने के पहचान है कि उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति का कोई फर्क करना नहीं आता है। प्रवृत्ति मतलब किस काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं व्हाट टू डू, और किस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू, ये फर्क वो नहीं कर पाते हैं। और उसका परिणाम कहिए, उसका साइड इफेक्ट कहिए, ना शौचम, ना उनके अंदर कोई प्यूरिटी रहता है, यहां फिजिकल से ज्यादा मेंटल प्यूरिटी है, ना उनके आचरण में उनके बिहेवियर में कोई अच्छापन दिखता है, ना उसमें कोई ऑनेस्टी दिखता है। अपने महाभारत की कहानी सुनी थी, दुर्योधन जब ऑलमोस्ट महाभारत युद्ध खत्म होने के कगार पर, कौरव के ज्यादातर कमांडर्स जो सेनापति मारे जा चुके हैं, सैनिक भी मारे जा चुके हैं, तो दुर्योधन अकेला बचा है, जो कमांडर है, कुछ सेना और बचे हैं। तो कृष्ण अपने पांडवों के साथ दुर्योधन को समझाने के लिए दोबारा जाते हैं कि अभी भी टाइम है, बंद कर दो, तुम इतने ज्ञानी आदमी हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्रों को जानते हो, क्यों सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए इतनी जिद्दी पकड़ के बैठे और इतनी बड़ी हिंसा को, हिंसा का कारण बनते हो, लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, अभी भी समय है कि थोड़ा रुक जाओ, बाकी जो है वो बच सकते हैं। तो दुर्योधन कहता है मैं क्या करूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, शास्त्र पढ़ा है, किताबें पढ़ा है, पढ़ा लिखा हूं, एजुकेटेड हूं, पर मेरा पता ही नहीं क्यों उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं जब भी कुछ सोचता हूं तो मेरे से वो हो नहीं पाता है। मैं ये भी जानता हूं क्या निवृत्ति है, किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, पढ़ा लिखा हूं, एजुकेटेड हूं, पर क्या करूं, मेरा मन उससे हटता नहीं है, मैं क्या करूं। और कह सकते हैं कि कमोबश हर इंसान इसी डिलेमा से गुजरता है, फैमिली हो, सोसाइटी हो, कहीं भी हो, बाजार हो, हमारे व्यवहार में कभी कभी ऐसा सा जिद्दी वाला व्यवहार आ चुका है जो हमें पता ही नहीं है कि नाउ इट्स बिकम पार्ट ऑफ आवर नेचर। हम चाहकर भी, हमें पता है ये नहीं करना चाहिए पर हम कर बैठते हैं, हमें पता है ये करना चाहिए पर कर नहीं पाते हैं। ये जो हमारी, ये तो आम आदमी की परेशानी है, कि किसी कारण से उसके अंदर वो आदत बना है, किसी तरह के एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा है जो उसको मजबूर करता है, अच्छा जानने पर भी ना कर पाता है, बुरा जानने पर भी बुरा को रोक नहीं पाता है। पर यह चीज जरूरी है, अगर कोई पूछे तो क्या करने लायक है, सिंपल सी बात है, करने लायक क्या है और क्या नहीं है, कितने शास्त्र तो नहीं पढ़ सकते, इतनी सारी चीजें सुन नहीं सकते, तो सिंपल डेफिनेशन है, वही करने लायक है। आदमी या इंसान कुछ करता है, क्यों करता है? सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। अगर आपको अंदर से किसी चीज में या मुझे किसी चीज में वो सुख नहीं आ रहा है, अगर उस करने उस चीज को करने के बाद मुझे गिल्टी फीलिंग हो रहा है, किसी चीज को करने के बाद मेरे अंदर बेचैनी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो मेरे लिए करने लायक नहीं था। तो इसीलिए हर इंसान का, इंसान छोड़िए इवन पशु पक्षी का भी जीवन में एक ही उद्देश्य है, दैट इज गेटिंग हैप्पीनेस, सुख पाना। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस में जो बात बैठी हुई है वो सुख पाना, हम कुछ भी करते हैं उस सुख पाने के लिए, वो अलग बात है कि उस सुख पाने के लिए जो कोशिश करते हैं उसमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता, अलग बात है। तो जिससे भी आनंद मिले, सुख मिले, ऐसे कामों को ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा पॉलिश करना चाहिए, ज्यादा उसके ज्यादा फर्टिलाइज की जो फर्टिलाइजर की जरूरत है कि आप उसको ज्यादा नॉरिश करो, ज्यादा टेक उसका केयर करो कि वो ज्यादा बढ़े फूले, जिससे हमें खुशी मिलती है। और जिस चीज में हमें दुख मिलता है उसे कम से कम करने की कोशिश करें, वो कितना भी हमें हजारों एक्सक्यूजेस हमारे सामने हो कि इसको करने से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, अगर उसको करने से मेरे अंदर की दुख बढ़ता है, अगर आप अपने बच्चों को जब बुरी तरह डांटते हैं, वो डांटने के बाद अगर आपको खुद को बेचैनी होती है, दुख होता है, तो मत डांटो। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि डांटने से ही बच्चा ठीक होता है, ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट किसी किताब में नहीं लिखा है। हर चीज का ऑप्शन होता है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है किसी के साथ लड़ने में, तो मत लड़ो, खुश रहो। आसुरी संपदा वाले लोग, डेविल नेचर वाले लोग यही समझ नहीं पाते हैं कि सुख या दुख में फर्क क्या है। मोस्ट ऑफ टाइम वो दुखों को ही सुख समझ बैठते हैं, बेचैनी को ही सुख का एक साइड इफेक्ट मान बैठते हैं। किसी भी सुख का कोई साइड इफेक्ट कभी बुरा नहीं होता है। अगर होता है, इसका मतलब किसी बुरे चीज को हम सुख के रूप में जबरदस्ती एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अक्सर जिंदगी भर लोग दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, अंधा होकर के, बिना समझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, मेरे लाइफ के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, मेरी खुशी के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं, बिना सोचे समझे हम भागते रहते हैं। हमें पता चला कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके वो आदमी 18-20 घंटे मेहनत करते हैं तो बहुत धनी हो गए, तो हम भी लग पड़ते हैं 18-20 घंटे मेहनत करने में, क्योंकि धनी बनना है। धनी इसीलिए नहीं बनना है कि धन से सुख मिलता है मुझे। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा धन कमाने से कोई सुख नहीं मिलता हो, थोड़े बहुत धन में आप खुश रहते हो, पर आप उस अंधे की तरह भेड़ चाल में हम दौड़ते रहते हैं, क्योंकि 10-20-50 लोग दौड़ रहे हैं तो शायद यही एक रास्ता है। मुझे कुछ पता नहीं है कहां सुख मिलेगा, कहां आनंद मिलेगा, बस सब दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ पड़ूं, तो 12-14-18 घंटे लगाता हूं, पता चला कि शरीर टूट चुका है, मन टूट चुका है, 500 मन और शरीर से बीमारियां लेकर के मन और शरीर के टूटा हुआ अवस्था को लेकर जीना पड़ता है। ना पैसे का सुख मिलता है, ना शरीर का सुख मिलता है, ना मन का सुख मिलता है, ना रिलेशनशिप में कोई सुख मिलता है, क्योंकि मुझे दूसरों के नकल करके भागना होता है। मुझे खुद समझ नहीं है कि पैसा सचमुच मुझे जरूरत है या नहीं, कितना जरूरत है। सिर्फ मैं नकल करता हूं अंधे की तरह, अंधेन नियमान यथांधः, जैसे कठोपनिषद में आप सुनते हैं कि ज्यादातर लोग जैसे एक ब्लाइंड बाकी ब्लाइंड को लीड करता है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। नेचुरली जो खुद ब्लाइंड है उसको रास्ता कहां से पता होगा जो दूसरों को रास्ता दिखाएगा। हम भी इसी तरह उन लोगों का नकल करते हैं जो खुद ही रास्ता ढूंढते फिरते हैं, जिनको खुद ही पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों काम कर रहा हूं, मैं ये पर्टिकुलर काम क्यों कर रहा हूं। कभी कभी जैसे हमें समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स संडे स्कूल में बच्चे भेजते हैं, मुझे लगता है उनमें बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो संडे स्कूल क्यों भेजते हैं। क्यों? कोई रास्ता क्लियर नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। बच्चे छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, ताश खेलते हैं, गॉसिप करते हैं, स्टोर करते हैं, आते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, पूछते नहीं बच्चा तूने कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, क्या सीखा। या खुद अगर बच्चे को कुछ सिखाना है खुद भी अपने हिसाब से डाले, कुछ नहीं। शायद पड़ोसी में 2-4-10 लोग जा रहे हैं, फैशन है, ना जाओ तो कोई सोशल प्रेशर है तो ले आते हैं। कोई फायदा नहीं है, ना पेरेंट्स को फायदा ना बच्चों को फायदा, सिर्फ शरीर हानि और अर्थनाश। तो आपका खुद का लक्ष्य क्या है आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर वो इंटेंशन में वो इंटेंसिटी आना चाहिए। नहीं, मेरे बच्चे को मुझे अपने देश की संस्कृति सिखानी है, अपना धर्म सिखाना है, अपनी भाषा सिखानी है, और जब आप सिखानी है खुद को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कोई किताबी चीजें नहीं है कि बच्चा मैथ पढ़े आपको नहीं आता है तो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे, बहुत सारे काम हम ऐसा करते हैं जिसमें हमें सुख नहीं मिलता, हमें खुद ही नहीं पता हम क्यों करते हैं, पर करते जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, दुनिया में ज्यादातर लोग लाइफ में अनसक्सेस होते हैं, सफलता नहीं मिलती है। लोग 25-25 साल से संडे स्कूल में बच्चे भेजा, बड़े होने के बाद बच्चे इतने बिगड़े हुए बने, माँ बाप कहते हैं क्या करें, देखिए पूरी कोशिश की थी, ये किया था वो किया था, देखो बच्चा ऐसा निकला, 25 साल का हो गया ऐसी बातें करता है, ऐसा काम करता है। तो हो सकता है कि आप जब तब आप बचपन में कोशिश कर रहे थे, आपको कोई लक्ष्य पता ना होगा, आप फ्लो में बह रहे थे, इसीलिए एफर्ट में कुछ था नहीं है, बस गाड़ी है पकड़ लिया, सुबह उठा के छोड़ दिया, ले गए। उस एफर्ट इसीलिए पावरफुल नहीं था क्योंकि आप खुद आपके लक्ष्य के बारे में पक्का नहीं थे और आपके एफर्ट में कहीं कमी रहती है। तो जब हमारा लक्ष्य क्लियर ना हो देवियों सज्जनों, तो हमारे एफर्ट में भी गड़बड़ियां आती है, तब हम लाइफ में ज्यादातर अनसक्सेस होते हैं। कभी धनी होकर भी सुखी नहीं होते हैं, कभी ज्ञानी होकर भी समझदार नहीं होते हैं, कभी पावरफुल होने पर भी अंदर से बहुत वीक होते हैं, डरे डरे रहते हैं। तो इन सब का कारण है कि हम अंधाधुंध काम करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि क्या करना है तब समझ में आएगा जब मुझे समझ में आए कि मुझे चाहिए क्या। मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जीवन को एंजॉय करना है, ये समझ नहीं आता है। और बहुत सारे लोगों को अभी भी कम समझ है जो कुछ हम करते हैं क्यों करते हैं। आप किसी दूसरे को दुखी करके कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। हमारे सुख के पीछे अगर किसी को दुख छुपा हुआ है, हमारे कमाई के पीछे किसी की कमाई की छिनी हुई कमाई छुपी हुई है, किसी की कमाई को हमने छीना है, हमें बड़ा होने के पीछे हमने कुछ लोगों को सप्रेस किया हो, तो उस सुख में उसमें कोई आनंद नहीं होता है। कोई भी सुख अगर दूसरों को दुख देकर के लिया गया हो, किसी को नीचा दिखाकर कोई आदमी सोसाइटी में बड़ा बना न बने, पर अंदर कभी वो अपने आप को बड़ा महसूस नहीं कर सकता, किसी को ह्यूमिलिएट करने से मैं कभी बड़ा नहीं बन सकता अपने लिए, पब्लिक में कौन क्या रिएक्ट करता है वो अलग बात है, पब्लिक तो हिपोक्रेसी के पीछे चलती है, आप जितना ड्रामा करो पब्लिक आपको उतना महान मानता है, हम मानते हैं, आप ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं मानता हूं, कोई बढ़िया ड्रामा करे, बड़ा अच्छा भाव दिखाए, मुस्कुराए, हम सोचते हैं कोई अच्छा आदमी होगा, पर उसी को ही पता है कि उसके अंदर क्या है, वो खुद अपने से जूझता है, अपने से स्ट्रगल करता है, इसीलिए आप किसी को दुखी बना के सुखी नहीं हो सकते। पेरेंटिंग भी उनमें से एक है, बच्चों को अच्छा बनाने के चक्कर में जब इतना ज्यादा दुखी कर देते हैं, बच्चे फाइनेंशियली या एजुकेशनली सक्सेसफुल हो जाते हैं पर वो अब सुखदायक नहीं रहते हैं, वो रिवेंज करने लगते हैं, वो बदला लेना चाहते हैं जो बचपन में हम उनके साथ करते हैं, उनकी भलाई के सोच के, ऐसा नहीं कि उस सचमुच बच्चों का भला हो रहा होता है, पर हमें लगता है कि हम भला कर रहे हैं इस सोच के साथ, जिस तरह के उग्र व्यवहार हम बच्चों के साथ कुछ लोग करते हैं तो वो उसका रिजल्ट उनको सही नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते पर दुखी हैं, हो ही नहीं सकता, शास्त्र कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दुखी हो, परेशान हो अंदर से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई कैलामिटी आया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी हुई, वो तो अलग बात है, पर सीधा साधा बड़ा हेल्दी आदमी, सब कुछ उसके पास है, ऐसे कितने लोग जो सुखी हैं, जो फिजिकली ठीक हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो सुखी हो, कितने लोगों को मिलेंगे, रेयर होता जा रहा है, इसीलिए होता जा रहा है हम समझ नहीं पाते हैं। दुख कभी, सुख कभी भी दूसरों को दुख देकर नहीं होता है। एक पिता अपने बेटे से बड़ा दुखी था, बोला क्या करूं, परेशान हूं, बहुत कोशिश करता हूं, डांटता हूं, फटकारता हूं, समझाता हूं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो, सुनता ही नहीं, लाइफ मिजरेबल बना दिया, नरक बना दिया बेटे ने। तो साधु जी ने बोला, किसी साधु से पूछा, बोला ऐसा ऐसा नहीं तो कि आप बच्चे का भला कम चाहते हो, खुद का भला ज्यादा चाहते हो, इसीलिए यह हुआ है, ऐसा कैसे होगा, बेटे का भला चाहता हूं, उसको हर तरह से कोशिश करता हूं, किसी काम का नहीं है, नालायक बन चुका है। पिता बच्चे को रोज डांटता है, फटकारता है, दूसरों के साथ कंपेयर करके ह्यूमिलिएट करता है और बच्चा अच्छा नहीं बनता है। आपको लगता है जिस दिन बच्चा अच्छा बन जाएगा तो वो पापा खुश होगा? देवियों सज्जनों, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको आदत है फटकारने का, डांटने का, छोटा दिखाने का, वो फिर कहां निकालेगा उस भड़ास को। पापा इसीलिए नहीं बिगड़े हुए हैं कि बच्चा खराब है, क्योंकि पापा का नेचर खराब है। देवियों सज्जनों, तो उस पिता का दुख बच्चे के बिगड़ने में नहीं है, उसके खुद के व्यवहार में है, जो खुद समझ ही नहीं सकता कभी। इवन बच्चा कल अच्छा भी बन जाए तो भी उसको प्रॉब्लम रहेगा, अब वो जो नेचर बन चुका है वो कहां निकालेगा, कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा। करने का ढंग तो वो समझने की जरूरत है, हो सकता है कि आपका इंटेंशन हो कि मैं बच्चे की भला चाहता हूं या किसी का भी भला चाहता हूं, पर द वे वी कम्युनिकेट इट वो हमारे दंभ को, वो हमारे ईगो को, वो हमारे एरोगेंसी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है इंस्टीट ऑफ सामने वाले को सुधारने को। और उसका परिणाम क्या होता है, व्यक्ति के अंदर रिवेंज आने लगता है। तो इसलिए मजा यह नहीं है कि मैं किसी को सुधार रहा हूं, मजा यह है कि मुझे मौका मिल रहा है, मैं अपने आप को भला दिखा रहा हूं, मैं एक अच्छा बाप हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं, और ये मेरी ड्यूटी है। मैं सबको डांटू, फटकारू, बोलो तुम गंदे हो, सुधर जाओ, सब सुधर जाएंगे तो मेरी दुकान, मेरी नौकरी बंद हो जाएगी, मुझे और फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर हम दुखी हैं तो हमें समझ लेना चाहिए गड़बड़ी हमारे अंदर कहीं है। आप दुनिया को बदल नहीं सकते, हमें ही अपने अंदर कुछ ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मिल जाए तो ठीक है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का भाव यही है कि हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। घर चाहिए तो क्यों, धन चाहिए तो क्यों, कपड़े चाहिए तो क्यों, घूमना है तो क्यों, उसका रीजन पता होना चाहिए। अगर उसका रीजन सुख है तो उसे सुख मिल रहा है तो करिए जरूर, नहीं मिल रहा है जितना जल्दी छोड़िए उसको, नहीं तो हम उस अंधे की तरफ फंसते रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आम आदमी के लिए, पर जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो इससे ज्यादा हेवी चीजों के साथ चलते रहते हैं। देवियों सज्जनों, जो असुर प्रवृत्ति के लोग, ना उनमें शौच होता है, क्लीनलीनेस है, ना उनके चरित्र में आचरण में कोई शुद्धता होती है, ना शुद्धि है ना आचरण में होता है। प्यूरिटी कैसे समझेंगे कि किसी के अंदर प्यूरिटी है कि नहीं है? आपको चावल खरीदना है, अगर चावल में रेत मिला हो, दाल मिला हो, और कुछ मिला हो, तो आप थोड़े कहेंगे कि ये चावल ठीक है, अशुद्ध है, इम्प्योर है, मिलावट है। जिसमें भी मिलावट होता है वो इम्प्योर होता है। माइंड की इम्प्योरिटी क्या है? जब मन में मिलावट होता है। मन की मिलावट क्या है? मन की मिलावट यह है कि मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना करते समय मेरा विचार आता है कि दुकान का क्या करूं, मुझे स्कूल में पढ़ाई करने जाना है, उस समय मुझे पढ़ना है, पढ़ते समय मुझे याद आता है कि सेलफोन का क्या करूं, मुझे सोना है, सोते समय सोना है, सोने की सीट पर मैं याद करता रहता हूं कि दिन भर मुझे क्या, कल मुझे किससे बात करनी है। तो जहां मेरा होना चाहिए वहां 100% होना चाहिए, पर हम बाय एंड लार्ज जो करते हैं हम वहां नहीं होते हैं। जो सोचते हैं, जो सोचना है, जो सोचने के लिए हम सोच रहे हैं, उसके अलावा बाकी को सब कुछ सोच रहते हैं। कभी आप मेडिटेशन करते होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जरूर कहीं ना कहीं मेडिटेशन सीखता होगा, करता होगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, मन शांत हो जाए अगर जेन्युइनली भी करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि धीरे धीरे आप विचार शून्य होंगे, थॉटलेस होंगे। जितना ही आप एफर्ट करेंगे थॉटलेस होने के लिए, आपको पता चलेगा उतने ज्यादा नए नए पता नहीं कहां कहां से विचार आते रहते हैं। जितना आपकी मेडिटेशन प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी आपकी लगाव बनने लगे, आपको देखेंगे आपको हजारों विचार, और ऐसी ऐसी विचार जो आप कभी 15 साल पहले, 20 साल पहले हो चुका है, छोड़ चुके हैं, वो सब आपको तंग करने आ जाते हैं। मन में इतने सारे विचार बने हुए हैं, पर जब हमारे जो जिस काम को हम करते हैं या जिस बात को हम सोचते हैं, अगर उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो इम्प्योर होता है। इसी को कहते हैं इम्प्यूरिटी ऑफ माइंड। वहां से हिपोक्रेसी पैदा होता है। मैं मेडिटेशन के नाम पर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूं, है ना? मैं खाने के टेबल पर टीवी सीरियल के एक्ट कैरेक्टरों को के बारे में सोच रहा हूं, स्टोरी के कैरेक्टर की सोच रहा हूं। तो ये जो जहां मैं हूं वहीं नहीं हूं, इतना गोलमोल अंदर हो चुका है, हमारा मन और शरीर बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बहने लगते हैं और यहीं से इंप्यूरिटी शुरू होती है, वो व्यक्ति को नष्ट करता है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा इंप्यूरिटी होगी वो उतना ज्यादा असुर प्रवृत्ति के होगा, जितमें जितना कम होगा वो उतना देवत्व की ओर चलता जाएगा। तो आप कुछ भी करे, कोई भी काम करे, आप उसको नहीं कर रहे होते हैं, हजारों काम साथ में कर रहे होते हैं, कोई एक चीज को आप सोच रहे होते हैं, आप अकेले नहीं सोच रहे होते हैं, पचासों चीजें साथ में चलती रहती है। ऐसा लगता है मानो हम सब एक एक मार्केट हैं, इंडिविजुअल्स बाजार, जिसमें हजारों चीजें चल रही है, भीड़ है, आपका मन किसी मार्केट से कम नहीं है, और वो यहां का मार्केट नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान वाला मार्केट जहां लाखों की भीड़ हो, शोर शराबा हो, ऐसा मन हम आप सबका है, जिसके अंदर एक साथ हजारों लोग बात कर रहे, हजारों चीजें चल रही होती है। मेडिटेशन का उद्देश्य यही है कि उन हजारों को दबा के एक ही टाइम पर एक ही चीज आए, एक ही टाइम पर एक ही चीज आए। घर की सोचना है तो घर ही आए, पैसे की सोचना है सिर्फ पैसे का विचार ही आए, ईश्वर को सोचना है तो सिर्फ ईश्वर ही आए। एक ही टाइम पर एक ही चीज सोचने की क्षमता पैदा हो जाए, बड़ी अचीवमेंट है। पर आमतौर पर इंसानी मन भटकता है, और जिसका बहुत ज्यादा भटकता है, जिसका मन जितना बड़ा शोर वाला बाजार है, वो उतना असुर प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये अशुद्धि है, और क्योंकि मन अशुद्ध है, इम्प्योर है, वहां सच और झूठ का कोई मतलब नहीं होता है, सब झूठ सच है, सब सच सच झूठ है, सब मिक्सचर बना होता है। और एक श्लोक ले लेते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। असुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा मानते हैं, ये जो यूनिवर्स है ये किसी फाउंडेशन पर टिका हुआ नहीं है, और ये जो संसार है कोई ईश्वर फिश्वर इसको नहीं बनाया है, ये जस्ट रैंडमली बन गया। क्योंकि कोई चीज रैंडमली बना, नेचुरली उसमें कोई रूल और रेगुलेशंस काम नहीं करते, क्योंकि रूल और रेगुलेशंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस यूनिवर्स इज ऑल अबाउट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए रैंडम एक्सीडेंट, रैंडम थ्योरी या एक्सीडेंट, तो इसीलिए एक्सीडेंट में कोई रूल नहीं होता। वहां किसी मैटर स्पिरिट इनका कोई कनेक्शन नहीं है, पैदा कैसे हुआ, ये सारा संसार वैसे ही एक्सीडेंटली पैदा हो गया। और ये जो पशु पक्षी प्राणी, दे आर हियर जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ देयर लस्ट, देयर काम वासना के कारण से पैदा हो गए, विदाउट एनी रीजन, एनी पर्पस, एनी गोल। इस थ्योरी के बैकग्राउंड में क्या माइंड चल रहा है, इस थ्योरी के बैकग्राउंड में माइंड ये है, क्योंकि इस यूनिवर्स का कोई कारण नहीं है, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी क्रिएटर, जस्ट एक्सीडेंटली कुछ बन गया और हम भी एक्सीडेंटली आ गए। तो फिर ये जो धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है, ये सभी यूजलेस है, इसे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आपने रोज अंधाधुंध, आपके पास बहुत सारे हजारों ईंट थे, अपने अंधाधुंध चारों तरफ ईंट फेंका और सारों सारे 5000 ईंट फेंकने के बाद देखने गए, देखा एक कोने में 10-12 ईंट एक के ऊपर एक बनके अंदर एक वैक्यूम बन गया है जिसमें आपको सामान रख सकते हैं, आपने कहा यह घर है। ऐसा नहीं होता है। अभी घर भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर होता है, प्लानिंग होती है, तभी रहने लायक होता है। पर असुरों की प्रवृत्ति है, जो असुर विचार वाले लोग होते हैं वही संसार को, संसार के पीछे के जो यूनिवर्सल लॉ है, जो ईश्वर है, या इस ये जो संसार जिस यूनिवर्सल वर्च्यू पर, मेरिट पर टिका हुआ है, वो उसको नहीं मानते। उसका परिणाम क्या है? जो मर्जी करो, जैसा मर्जी खाओ। भारत में एक बड़े प्राचीन नास्तिक आचार्य हुए, एथिस्ट आचार्य, चार्वाक उनका नाम है। वो लिखते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो, मजे करके जियो जीवन, जिंदगी में और कुछ आगे कुछ होने वाला नहीं है। मर गए बात बात साफ है, आगे कोई नरक स्वर्ग पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा ये सब कुछ नहीं है। जो मिला यही है, एक्सीडेंटली गलती से आ चुके हो, एंजॉय करो। पैसा नहीं है तो कर्जा लो। पर एक मजेदार बात है, वो भारतीय था, उसने ये नहीं बोला कि कर्जा करो और शराब पियो, ड्रग लो। उसने बोला घी पियो। अब आज के लोगों को हंसी आएगी, बोला ये तो बोल देता, थोड़ा बढ़िया से बोल देता भाई, कर्जा लो, एंजॉय करो, खूब नशा करो। उसने बोला घी पियो। शायद प्राचीन काल के भारतीय कितने भी बिगड़ जाएं, वो घी पीने तक ही बिगड़ते थे, उससे ज्यादा नहीं बिगड़ पाते थे। पर उद्देश्य यही था, क्योंकि जीवन में जितना जिंदगी है उतना और कुछ नहीं, कोई परवाह मत करो। लेकिन मानिए, आज के समय पर ज्यादातर लोग, इवन हमारे अगल बगल के ज्यादातर लोगों का अंदर से यही विचार है, कुछ नहीं रखा है, खाओ पियो ऐश करो एंजॉय करो, लाइफ कुछ नहीं रखा है, ये सब वैसे ही मंदिर वाली बात है, मंदिर में सुनना अच्छा लगता है। रियल लाइफ के लिए कोई कि कोई प्रभु है, कोई आत्मा है, कोई मेरिट है, कोई डिमेरिट है, कोई यूनिवर्सल लॉ है, और हमने 400-500 साल से इसको इंप्लीमेंट भी किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया टेक्नोलॉजी के द्वारा। रिजल्ट क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग से लेकर, क्लाइमेट चेंज से लेकर, हजारों तरह के नई नई बीमारियों से हम ग्रस्त हो रहे हैं। क्योंकि हमने जब साइंस पढ़ा, अपने आप को साइंटिस्ट समझने लगे, हमने इस यूनिवर्स को चैलेंज किया, इसके रूल्स को चैलेंज किया, हमने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी निकाला कि इसी नेचर को एक्सप्लोइट किया जा सके इंसान की सुख को भोगने के लिए। सिर्फ 400 साल किया, करोड़ों करोड़ों साल की धरती, सिर्फ 400 साल के आसुरी प्रवृत्ति के कारण, यही जो प्रवृत्ति है कि कोई कुछ नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ कोई मेरिट नहीं, सब एक्सीडेंटली है, एंजॉय करो नेचर में है। और हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम ही इंसान है, ईश्वर हैं, हम साइंटिस्ट ईश्वर हैं, हम सब कुछ बनाएंगे, जो नहीं बनाए कल भी बना डालेंगे, एंजॉय करो। 400 साल में हम धड़ाम से गिरने लगे हैं। नहीं, हम कुछ भी करें, वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। इसीलिए क्लोनिंग पर अब ज्यादातर सरकारों ने बैन लगाना शुरू किया है कि आप ह्यूमन बीइंग का क्लोनिंग नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ही आप ये डिनाइंग मोड में आते हो कि संसार में कोई रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, सब रैंडमली चल रहा है, तो आप असुर बन जाते हो। आप कुछ भी विध्वंस कर सकते हो। इंडिविजुअली करो तो इंडिविजुअल का बर्बाद करोगे, अगर आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो तो संसार का नुकसान होगा, जो हमारे सामने है। ये सब आसुरिक प्रवृत्ति है। तो आगे की बात फिर आगे के श्लोक में रखेंगे, और हम कुछ दिनों तक ये चलेगा, असुरों की किस तरह के लक्षण है, फिर उसके आगे की फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना।